माटेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर सतगुरुवार के दिन विशेष भोग तथा वचन का दिव्य संदेश गुलजारदा जी के द्वारा। आज जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो वतन का नजारा अति प्यारा और अति न्यारा। वैसे तो बाबा सामने खड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन आज सामने एक सजीवी स्टेज दिखाई दे रही थी और स्टेज के सामने एक पर्दा था। जैसे मैं आगे बढ़ते स्टेज के नजदीक जाती रही तो पर्दा थोड़ा थोड़ा खुलता जाता था। जारदा जी वतन में जैसे जैसे स्टेज के नजदीक पहुंचती गई वैसे वैसे पर्दा खुलता जाता था। जब मैं बहुत नजदीक पहुंच गई तो पर्दा पूरा खुल गया। और दूर दूर रहेंगे तो पर्दा कैसे खुलेगा? नजदीक जाएंगे तभी तो पर्दा खुलेगा। पर्दा पूरा खुल गया और स्टेज पर भिन्न भिन्न फूलों के रूपों में 36 गुण बहुत सुनहरी लाइट के अक्षरों में लिखे हुए थे, जो बहुत चमक रहे थे। तो पूरी स्टेज उन 36 गुणों लक्षणों से सजी हुई थी और सामने मम्मा बहुत बड़ी शक्ति सेना के साथ खड़ी थी। उसके बिल्कुल पीछे थोड़ा ऊंचे बाबा खड़े हुए थे। शक्ति सेना के पीछे गार्ड के रूप में बाबा खड़े हुए थे और शक्ति सेना से थोड़ी ऊंचाई पर खड़े हुए। बाबा का हाथ वरदान के रूप में था, मम्मा के और सभी शक्तियों के हाथ में शिव बाबा के छोटे छोटे चमकीले झंडे थे। मैं तो पहले ये दृश्य देखती रही, फिर हमारी नजर बाबा के ऊपर गई तो बाबा ने मुस्कुराते हुए बोला, आओ मेरे जन्म के साथी, सेवा के साथी, संपूर्णता के साथी, आओ बच्ची आओ। कौन सी बच्ची? गुलजार। क्या खासियत बताई? मेरे जन्म के साथी, सेवा के साथी और संपूर्णता के साथी। ऐसा कहकर बाबा ने हमारे से नयन मुलाकात की। मम्मा ने भी ऐसे झंडा हिलाते हुए स्वागत किया। कुछ समय के बाद मम्मा जो शक्तियों के बीच में थी वह बाबा के साथ पीछे चली गई और आगे सब दादियों की लाइन हो गई। तो मैं भी उस दादियों की लाइन में चली गई। उसके बाद ये सीन मर्ज हो गया। फिर बाबा, मम्मा और मैंने अपने को ही देखा। तो बाबा ने मम्मा से कहा कि मम्मा, बाबा ने आपको जिम्मेवारी दी और आपने फिर दादियों को जिम्मेवारी दे दी। तो मम्मा मुस्कराई और कहा, ड्रामा यही था। ड्रामा में संसोज फादर गाया हुआ है, संसोज मदर गाया हुआ है, तो बच्चे माँ और बाप दोनों का साक्षात्कार कराएं। बाबा जब ये कह रहे थे तो हमारी दादी जानकी जी के साथ और भी कुछ दादियां ही बढ़ी और सामने एक वर्ल्ड का ग्लोब देखा। उस ग्लोब पर बहुत सारे फेसेस चेहरे दिखाई दे रहे थे और साथ ही ग्लोब चेहरों से भरा हुआ था, लेकिन वह ग्लोब काला काला नजर आ रहा था। कौन सा ग्लोब? दुनिया का ग्लोब है वो काला काला नजर आ रहा था, सुंदर नहीं लग रहा था। तो बाबा ने कहा, बच्चियां बच्चियों, इसे आपको सुनहरा ग्लोब बनाना है, माना ये दुनिया काली दुनिया हो गई है, तामसी दुनिया हो गई है, इस तामसी दुनिया को शक्ति सेना को सुनहरा बनाना है। तो इतने में ही हमने देखा सभी दादियों के नैनों से जैसे सकाश निकल रही है और सभी आत्माओं के ऊपर नजर पड़ रही है, जैसे जैसे वो सकाश आत्माओं के ऊपर पड़ रही थी वैसे वैसे उसके फेजेस चेहरे थोड़े थोड़े बदल रहे थे। तो बाबा ने कहा, निमित्त जो मेरे बच्चे हैं उन्हें अब यही कार्य करना है। इतने में मम्मा ने कहा, बाबा कब तक ये कार्य करना है? तो बाबा ने कहा कि मम्मा इन सब बच्चों से पूछो डेट कौन सी रखी है। तो सभी बच्चे मुस्कराने लगे। मम्मा ने कहा कि अभी बहुत दुख के रोने की आवाज आते हैं, क्या ये दुख के रोने की आवाज आप सबको नहीं आते हैं क्या? तो सब मुस्कराने लगे। मम्मा ने कहा, अभी एडवांस स्टेज पर जल्दी जल्दी कदम उठाओ। बेसिक के तो कदम उठाए, अभी क्या करो? एडवांस स्टेज पर जल्दी जल्दी कदम उठाओ। एडवांस के स्टेज में धीमे धीमे जाने से काम नहीं चलेगा। फिर मम्मा ने कहा बाबा को, बाबा आप ही डेट फिक्स करो ना। तो बाबा ने कहा, मैं नहीं करूंगा, ये बच्चों को डेट फिक्स कर स्वयं को संपन्न बनाना है और समाप्ति करनी है। तो ऐसे ऐसे मम्मा बाबा और बच्चों की रू रेहान चल रही थी। क्या रू रेहान का रिजल्ट आया? क्या करना है? है दीदी दादी दादाओं को क्या करना है जो अभी तक नहीं किया है? बेसिक में तो चलते रहे, तेजी से भी चले, लेकिन एडवांस में अभी तीखी गति से कदम नहीं उठाया था, वो कदम अभी उठाना है। फिर बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा आज तो आपको सभी बच्चे चाहे अव्यक्त रूप से जन्म लिया है चाहे साकार रूप से लिया है, लेकिन सारे वर्ल्ड के बच्चे आज आपको याद कर रहे हैं। और कौन से बच्चों की बात बताई है? वो बच्चे जिन्होंने बेसिक में अथवा एडवांस में शरीर छोड़ा और शरीर छोड़ने के समय बाद कुछ न कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए अव्यक्त स्टेज धारण कर ली और अव्यक्त स्टेज धारण करके कोई न कोई तन में प्रवेश करके शरीर से पार्ट बजाय रही, वो ये अव्यक्त रूप से उनका जन्म की बात हुई। अथवा दूसरे बच्चे जो साकार में हैं, तो सारे वर्ल्ड के बच्चे आज आपको याद कर रहे हैं। तो मम्मा ने कहा, हम भी तो याद करते हैं। बाबा ने कहा, अच्छा आज तो मधुबन से आपके लिए 36 प्रकार का भोजन आया है। तो मम्मा ने कहा, ये 36 प्रकार देख करके यही याद आता है कि ये 36 गुण ऐसे ही सबके जीवन में समा जाए जो सभी देवियां और देवता बन जाए। तो बाबा ने कहा, मम्मा अभी भोग तो स्वीकार करो, تو مما نے کور ہٹایا اور سب کے اوپر دستی دی. مما نے کہا یہ 36 پرکار کا بھوگ بہت سندر ہے. تو بابا نے مما کو کہا آج تم دادیوں کو کھلاؤ. تو ہم لوگوں نے کہا بابا پہلے آپ مما کو کھلاؤ. تو بابا نے مما کو گٹی کھلائی, مما نے سبھی کو اپنے ہاتھوں سے کھلائی اور ایک گٹی لے کے ایسے ورلڈ کے گولے پر گھمائی جیسے مما سبھی بچوں کو کھلائے رہی. تو بابا نے مما کو مت کر دیا اور ہم سبھی دادیاں بابا کے آگے جا کے تو بیٹھ گئی. تو بابا نے کہا میں آج ایڈوانس پارٹی کی بات سناتا ہوں. اس ایڈوانس پارٹی میں آپ لوگوں کو اب جلدی جلدی قدم اٹھانا ہے, ابھی تک تو دھیان نہیں دیا. تو اب جلدی جلدی قدم اٹھانا ہے تو وہ ایڈوانس پارٹی کی بات آج میں بتاتا ہوں. تو ہم سب نے کہا ہاں بابا ہم بھی سننا چاہتے ہیں. وہ تو ایڈوانس پارٹی اوپر سمجھتے ہیں. تو بابا نے کہا کہ جو ایڈوانس پارٹی میں ہمارے مکھی جو سبھی گئے ہوئے ہیں, مکھیا مکھی مکھی آتمائیں گئی ہوئی ہیں, کون کون وشوکشور بھاؤ گئے ہیں, پہلے ان سے بھی پہلے مما گئی تھی, پھر بابا بھی گئے, منموہنی دیدی گئی اور
جگدیش
بھائی تو بعد میں گئے, پہلے وہ چندرمنی دادی گئی, پھر پشپ شانتا دادی کرناٹک کی گئی. تو جو ڈھیر شیر مکھی مکھی گئے ہوئے ہیں آج کل وہ اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں سپن میں آتا ہے کہ میں جیسے کرشن کی رادھا بننے والی ہوں.
کرشن کی رادھا
وہ بھی مکھی مکھی گئے ہیں وہ سب. ہاں اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں سپن میں آتا ہے کہ میں جیسے کرشن کی رادھا بننے والی ہوں جو ایڈوانس پارٹی میں گئے ہوئے ہیں. آج کل وہ اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں ایسی بات. شروعات میں تو لیلا چلی تھی ساکشاتکاروں کی اور ابھی چل رہی ہے سپن کی لیلا. تو وہ ایسے کہتے ہیں, انہیں یہ سمجھ میں نہیں ہے کہ میں ہی رادھا ہوں, لیکن جیسے سپن میں دیکھا جاتا ہے ایسے کہتی ہے کہ ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے کہ میں کرشن کے ساتھ رادھا بن کر کھیل رہی ہوں, راس کر رہی ہوں. ایسے ایسے سپن آتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ جو شریر چھوڑ گئے مکھی مکھی آتمائیں دیدی دادی یا دادائیں, ان کے بارے میں بتایا کہ وہ جہاں ابھی ابھیکت جنم لے کر کے پارٹ بجائے رہے ہیں ان کو وہاں ایسے سپن آتا ہے اور اپنے ماں باپ سے بتاتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ہم رادھا بننے والے ہوں. یہ بات کس کی ہوئی؟ شریر چھوڑنے والوں میں وہ کہ پہلی کون؟ مما. تو مما جہاں کہیں بھی, چھوٹی مما بڑی مما تو برہما بابا ہوا, چھوٹی مما جہاں کہیں بھی شریر چھوڑ کر کے جو کوئی بھی ساکار چولے میں پارٹ بجائے رہی ہے اس پارٹ دھاری کو ایسا ایسا سپن آتا ہے. دونوں ہی آتماؤں کی بات, کیا پرویش کرنے والے کی بھی بات مانے مما کی بھی بات اور جس میں پرویش کیا ہے اس کی بھی بات. تو ایسے لگتا ہے جیسے کرشن کے ساتھ رادھا بن کر کھیل رہی ہوں, راس کر رہی ہوں. ایسے ایسے سپن آتے ہیں. और जो भी पिछले साथ में गई हुई है उनके साथ माने उनके बाद उनको भी ऐसे ऐसे स्वप्न आते हैं कि हम ही गोप गोपियां हैं क्या हम ही कृष्ण के साथ रास करने वाली ज्ञान डांस करने वाली गोप गोपियां हैं। तो ब्रह्मा कुमारियों ने तो स्थूल रास किए शरीर के हद के डांस जो दुनिया में भक्ति मार्ग वाले करते चले आए रासलीला रचाते रहे हैं ना दुनिया वाले भक्ति मार्ग में तो उन्होंने कौन सा रास किया और कौन सा रास समझ लिया दुनिया वालों ने तो स्थूल शरीर का रास समझ लिया वास्तव में है ज्ञान डांस का तो ऐसे ऐसे स्वप्न आते हैं और समझते हैं कि हम ही गोप हैं और हम ही गोपी हैं। श्री कृष्ण के साथ है क्या है श्री कृष्ण के साथ क्या है गोप और गोपियां गुप्त पार्ट बजाने वाले गुप्त संबंधों का पार्ट बजाने वाले जिन गुप्त संबंधों की गुह्यता को दुनिया वाले नहीं पहचानेंगे लेकिन 16108 गोप गोपियां उन गुप्त संबंधों की गुह्यता को पहचानती अभी श्री कृष्ण छोटेपन का ही आ रहा है क्या अभी श्री कृष्ण ने बड़प्पन का पार्ट बजाना शुरू नहीं किया है छोटेपन का श्री कृष्ण आ रहा है राजधानी का बड़ा रूप नहीं आ रहा है क्या श्री कृष्ण का जो चित्र दिखाते थे पहले ब्रह्मा कुमारी आश्रम में कि सीधे हाथ में स्वर्ग का गोला लेकर के आ रहा है और पांव से नरक की दुनिया को लात मार रहा है तो देखा कि छोटेपन का ही चित्र आ रहा है राजधानी का बड़ा रूप नहीं आ रहा है माना जो भी संगठन तैयार किया है कृष्ण की आत्मा ने एडवांस पार्टी में छोटा संगठन है बड़ा संगठन अभी दिखाई
नहीं
दे रहा छोटा संगठन कितना होता है हैं 9 लाख एकदम 9 लाख वो दिल्ली में तो आवाज हो जाएगी है वो 9 लाख का संगठन जब बन जाएगा तो ये दिल्ली जो करोड़ से ऊपर की बन गई है वो थोड़ी दिखाई पड़ेगी तो खलास हो जाएगी संपूर्ण स्थापना हो गई तो संपूर्ण विनाश विनाश हो जाएगा कौन सी की बात होगी राजधानी के कौन से संगठन की बात होगी अभी 16000 की भी बात नहीं हो सकती 16000 जो है वो तो सारा का सारा राज परिवार इकट्ठा हो गया और राज परिवार जब तैयार हो जाएगा तो प्रजा तो अपने आप ही तैयार हो जाएगी तो 16000 की भी बात टिकती नहीं है माने कितने का राजधानी का संगठन तैयार हुआ होगा हाँ जो इस साल की अगस्त वाणियों में बाबा ने कौन से मणकों की विशेष बात की है अष्टदेवों की बात की है तो उन अष्टदेवों का संगठन जो है बताया कि वो राजधानी का बड़ा रूप नहीं देखने में आ रहा है लेकिन छोटा रूप राजधानी का देखने में आ रहा है देखो ऐसी परिस्थितियां हैं कैसी एडवांस पार्टी के लिए ऐसी परिस्थितियाँ अठानवे से चल रही है और उन परिस्थितियों के बीच में कहीं इनकम टैक्स का हमला कहीं कोर्ट कचहरी का हमला है और उसके बाद और अब नए नए सिगूफे छोड़ते जा रहे हैं कि हम फिर उन्हीं मामलों में फिर से दोबारा फंसाएंगे है तो गुप्त रूप में काम तो चल रहा है पांडव गुप्त घूमते हैं गुप्त राजधानी स्थापन करते हैं तो ऐसे गुप्त वातावरण में रह करके राजधानी का छोटा रूप फिर भी ब्राह्मणों को देखने में आ रहा है क्योंकि अगर संगठन नहीं होगा तो कोई भी काम सफल नहीं हो सकता प्योरिटी होगी तो यूनिटी होगी और यूनिटी रूपी संगठन होगा तो प्रत्यक्षता दिखाई पड़ेगी राजधानी की। तो बाबा ने कहा जैसे एडवांस पार्टी को नई दुनिया की नजारे आंखों के सामने स्वप्न के रूप में आ रहे हैं, किसको आ रहे हैं को आ रही है नजारे एडवांस पार्टी
दादियों
तुमको आप ही आगे बढ़ना है क्या बोला तुमको एडवांस पार्टी की तरफ जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने हैं। वो तो अभी पहुंची भी नहीं है वहाँ है। एडवांस पार्टी का क्या राज है वो तो समझती
कहाँ
है एडवांस पार्टी। लेकिन बाबा कहते हैं कि दीदी दादी दादाओं को तो अभी कदम बढ़ाने हैं जल्दी जल्दी एडवांस पार्टी की तरफ, क्योंकि उनका काम भी उनके वजह से रुका हुआ है। तो बताया कि बाबा ने कहा जैसे एडवांस पार्टी को नई दुनिया के नजारे आंखों के सामने स्वप्न के रूप में आ रहे हैं। क्या स्वप्न के रूप में एडवांस पार्टी को नजारे सामने आ रहे हैं, ऐसे आप बच्चों को साकार में लाने। क्या एडवांस पार्टी वाले तो है प्लानिंग करने वाले, कौन सी पार्टी है वो प्लानिंग पार्टी है। तो प्लानिंग पार्टी तो कहाँ अपना उधेड़ बुन करेगी मन के अंदर, मन के संकल्पों के अंदर उधेड़ बुन चलती है। तो जैसे जैसे सारा दिन आदमी संकल्प चलता है चलाता है वैसा ही अंदर रात में स्वप्न भी आते हैं, स्वप्न भी आते हैं। तो बोला कि नई दुनिया की नजारे आंखों के सामने स्वप्न के रूप में एडवांस पार्टी को आ रहे हैं, ऐसे ही आप बच्चों को साकार भी ये नजारे आपको लाने। किसको लाने? दीदी दादी दादाओं में से जो भी चंद्रवंश की श्रेष्ठ आत्माएं होंगी, जो विजयमाला में पिरोई जाने वाली होंगी, उन आत्माओं को वो प्रैक्टिकल पार्ट बजाने। एडवांस पार्टी के कितने रूप बताए? तीन पार्ट बताए। तीन ग्रुप्स में वो एडवांस पार्टी काम कर रही है। एक तो वो आत्मा है जो शरीर छोड़ रही है और प्रवेश करके पार्ट बजा रही है, वो है इंस्पिरेटिंग पार्टी। कौन सी पार्टी?
इंस्पिरेटिंग,
वो उमंग उत्साह दे रही है प्रवेश करके,
प्रोत्साहन
दे रही है। और दूसरी पार्टी है प्लानिंग पार्टी, जिनमें वो प्रवेश करती है उन आत्माओं का संगठन है प्लानिंग पार्टी। वो बुद्धि बहुत चलाते हैं। क्या बुद्धि बहुत चलाते हैं? सारे के सारे सेवो हम बन के बैठे हुए अकल बहुत चलाते हैं। तो बुद्धि ज्यादा चलाने के कारण उनके संकल्प भी बड़ी तीव्र गति से, मनन चिंतन मंथन उनका ज्यादा चलता है। और तीसरी पार्टी वो है जो अभी किसी की नजर के सामने नहीं है, लेकिन वो निकलने उन्हीं में से है जो दीदी दादी दादाओं के अंदर में चल रहे हैं। तो उनमें गुलजार दादी का भी नाम ले दिया बाबा। क्या नाम लिया? गुलजार दादी का क्या काम बताया? कि जो नई प्रत्यक्षता होगी उसमें सात जन्म लेने का पार्ट किसका है? गुलजार दादी। साथ में सेवा का भी पार्ट है और साथ में संपूर्णता का भी पार्ट है और साथ में जन्म लेने का भी पार्ट है। मुख्य दादियां कितनी है? तीन। तीन में से कितने को चुना? एक गुलजार दादी को चुना। क्यों? अकेली गुलजार दादी को ही क्यों चुना? दो को क्यों छोड़ दिया?
तो ब्रह्मा बाबा का पार्ट उन्हीं के थ्रू चल रहा है।
तो ब्रह्मा बाबा का पार्ट तो चल रहा है, लेकिन पार्ट कैसा चल रहा है? जब दादी कहती इधर आओ जब दादी कहती उधर आओ तो उधर चली जाती तो जैसे असिस्टेंट मैंने पार्ट बजाती है ना,
लगा
ऐसा ही तो पार्ट चल रहा है। उनको किसी के आर्डर पे चलना पड़ रहा है ना। किनको? गुलजार दादी को। तो उनको सहन तो बहुत करना पड़ता है। इधर बाबा की भी प्रवेशता होती है तो वो भी भारी बना जाता है, और दीदी दादियों का भी घड़ी घड़ी डायरेक्शन से नए नए तरीके के मिलते रहते हैं तो उनको फॉलो करने पड़ते हैं। तो उन मुख्य तीन दादियों में से गुलजार दादी को बाबा ने चुना। अपना साथी बनाने के लिए, सेवा का साथी बनाने के लिए और जन्म का साथी बनाने के
लिए
और संपूर्णता के लिए। तो बोला कि एडवांस पार्टी की नई दुनिया के नज़ारे जो आंखों के सामने स्वप्न के सामने स्वप्न में आ रहे हैं, ऐसे नज़ारे आप बच्चों को अभी साकार में ला दें। क्या ये उनके सपनों को आप बच्चों को साकार करना है, माने उस ग्रुप में से ही कोई ऐसी बहने असिस्टेंट बहने ही निकलेंगी जैसी गुलजार दादी असिस्टेंट का पार्ट बजा रही है, ऐसी ऐसी असिस्टेंट बहने निकलेंगी जो यह कार्य प्रैक्टिकल में संपन्न करेंगे। तो अभी आप उस गोल्डन एज को इमर्ज करो। क्या वो तो स्वप्न में ला रहे हैं एडवांस पार्टी वाले, स्वप्न में और संकल्पों में ये बात उनके रमण कर रही है, लेकिन आप क्या करो, आप उस गोल्डन दुनिया को इमर्ज करो जो अभी उनके संकल्पों में मर्ज है। इनके संकल्पों में मर्ज है, एडवांस पार्टी के संकल्पों में जो नई दुनिया की बातें मर्ज है, उन मर्ज हुई बातों को तुम हाँ अभी इमर्ज करो, बाहर लाओ, साकार में नई दुनिया बनाओ। परमधाम में तो वाया जाकर के स्वर्ग में ही आने वाले, क्या कहा, नई दुनिया में तो जाएंगे लेकिन जाएंगे कहाँ होकर, वाया जा करके कहाँ जाएंगे, वाया
परमधाम,
पहले परम ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे तो क्या फायदा हुआ नई दुनिया देखने का, ऊपर जाएंगे तो शरीर छोड़ने पड़ेंगे। नहीं, बाबा ने बोला है परमधाम को तुम बच्चे इसी सृष्टि पर उतार लेंगे, माने इसी दुनिया में कोई ब्राह्मण बच्चों का ऐसा निराकारी तेज वाला संगठन बनेगा जहाँ सबके संकल्प शून्य हो जाएंगे। जैसे परमधाम में कोई संकल्प विकल्प नहीं होता है, ऐसे उस संगठन के बीच में जो भी आत्मा पहुंचेगी उसकी स्टेज कैसी हो जाएगी, निराकारी निर्विकारी और निरंकारी निर्विकल्प स्टेज हो जाएगी। तो बोला परमधाम तो वाया जाकर के स्वर्ग में ही आने वाले हैं, परमधाम जाएंगे फिर स्वर्ग में आएंगे। अच्छा, जैसे ब्रह्मा बाबा को लगता था कि नारायण की ड्रेस जैसे खूंटी पर लटकी हुई है, क्या अभी ये ड्रेस है ब्रह्मा की ड्रेस सफेद पोश और आओ वो रंगीन ड्रेस जो है खूंटी पर लटकी हुई है उसे अभी पहन करके मैं स्वर्ग में जाने वाला हूँ। जैसे घरों में ड्रेस टंगी रहती है ना, तो कहते हैं ये पुराने कपड़े उतारे और ये अच्छे कपड़े पहन करके हम बाहर घूमने जाएं। तो गोल्डन दुनिया की ड्रेस जैसे खूंटी पर लटकी हुई बाबा को दिखाई देती थी, बस मेरे को पहननी है ये ड्रेस, मेरे को पहननी है। ऐसे तुम लोगों को भी अभी स्वर्ग के नजारे साकार में आने चाहिए। क्या ये प्रैक्टिकल में स्वर्ग लाने का पार्ट फिर भी आप बच्चों का है, एडवांस पार्टी का पार्ट है वो अभी पूरा हो रहा है। क्या पार्ट था एडवांस पार्टी का, एडवांस पार्टी में जो मुख्य है ग्रुप है प्लानिंग पार्टी, उसका पार्ट था नई दुनिया की प्लानिंग करना। जैसे कोई मकान बनता है ना, तो मकान बनाने के पहले पहले इंजीनियर क्या करते हैं,
नक्शा
बनाते, सारा नक्शा बना के तैयार कर देते हैं, प्लानिंग तैयार करते हैं, ऐसे ऐसे काम होना है, ऐसे ऐसे टाइम के अंदर सारा काम तैयार करते हैं। तो प्लानिंग अब तैयार हो चुकी, अब प्रैक्टिकल में साकार रूप में नई दुनिया को गोल्डन एज को लाने का कार्य तुम्हारा। तो अभी स्वर्ग के नजारे साकार में आने चाहिए, आज हम ये हैं और कल हम ये जाकर के बनेंगे। तो बाबा ने कहा अभी गोल्डन वर्ल्ड को अपनी स्मृति में लाना चाहिए। क्या क्या اب اس نرک کی دنیا کو بھول کر کے گولڈن ایج میں اسمرتی جانی چاہیے. جیسے جیسے آپ اس اسمرتی میں رہیں گے تو یہ ورلڈ جو ہے وہ دھیرے دھیرے بدلتی جائے گی. کون سی ورلڈ؟ یہ جو براہمنوں کی دنیا ہے وہ دھیرے دھیرے سطح ہی بدلتی جائے گی. اس سے پہلے بھی ہمیں تمہارے میں کیا بول دیا 2004 کے لیے کیا بولا تھا؟ پریورتن پریورتن مہان پریورتن. تو پھر بابا نے پوچھا بچی اور کیا سماچار لائی ہو؟ میں نے کہا بابا سیوائیں تو بہت چل رہی ہیں, سب جگہ بڑے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں, دادی کا سنکلپ ساکار ہو رہا ہے. کیا دادی کا سنکلپ کیا رہتا ہے؟ جیسے دنیاوی ریت سے بڑے بڑے مجمع اکٹھے کرتے ہیں, بڑے بڑے دھرماچاریہ شنکراچاریہ, ایسے دادی کا بھی پلان ہے بڑے بڑے مجمع اکٹھے کرنا. بڑے بڑے مجمع دادی اکٹھی کرتی ہیں اور بابا کیا کہتے ہیں بیتوانیوں میں کہ باپ دادا آج کل وطن میں کیا کرتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے گروپس بچوں کے بناتے ہیں, بڑے بڑے مجمع نہیں کرتے کرتے کیا کرتے؟ بچوں کے چھوٹے چھوٹے گروپس بناتے ہیں اور ان کے ساتھ چٹ چیٹ کرتے ہیں. تو دنیا دیکھو کیا کرتی ہے اور باپ دادا کیا کرتے ہیں. تو دادی کا سنکلپ ساکار ہو رہا ہے جو دادی اور دادی جان کی ساکھی ہو کر کے سن رہی تھی. سب مسکرائے رہے تھے. اس کے بعد بابا نے کہا اچھا سبھی بچوں کو یاد کیا تو دیں گی, لیکن بابا ایک شبد کی سوگات دیتے ہیں. وہ ایک شبد ہے ایک نامی اور اکانومی. کیا؟ ایک کے نام میں رہو, نام اور کام. کام کس کا کرنا ہے؟ ایک کا کام کرنا ہے اور ایک کا نام بالا کرنا ہے. ایک کی اسمرتی بدھی میں رہنی, ایک کے لیے ہی سیوا کرنی ہے اور ایک کے بتائے ہوئے گن اور شکتیاں اپنے جیون میں دھارن کرنی, ایک کی قیمت پر چلنا ہے. تو ایک نامی اور اکانومی, جو بھی سنکلپ کریں تھوڑے سنکلپ کریں, اچھے اچھے ڈھیر سارے سنکلپوں کا مجمع نہیں لگائیں. اور کیا کریں؟ ایک ہی کاریہ بابا نے دیا ہے نئی دنیا بنانے کا, اس نئی دنیا بنانے کے کاری میں لگ جاتے ہیں. ایک نامی اور اکانومی, زیادہ بدھی کو زیادہ واچا کو زیادہ کرمندریوں کو شکتی کے آدھار پر چھین نہیں کرنا. اکانومی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کم خرچ کرنا, کم خرچ بالانس. سنکلپ بھی کم خرچ ہو, واچا کی شکتی بھی کم خرچ ہو اور کرمندریوں کی پاور بھی کم خرچ ہو اور زیادہ سے زیادہ لگے بابا کی یاد میں. کیونکہ دنیا کا سارا پریورتن ہونا کس سے ہے؟ یاد کی. ابھی تک کتنی بھاگ دوڑ کر لی ایشوریہ سیوا میں, کتنی بھاگ دوڑ کی, بہت بھاگ دوڑ کی اور بہت بھاشن بازی کی, بہت واچا چلائی, لیکن ریزلٹ کچھ بھی نہیں. سب نراش ہوئے پڑے, لیکن رزلٹ نکلے گی کیا ہے؟ منسا سیوا. کیوں؟ شنکر لیتا ہے وشو کی بادشاہی, وشوناتھ کہا جاتا ہے, تو کرمندریوں کی سیوا کرتا ہے یا بادشاہ سے بھاشن کرتا ہے؟ نہ کرمندریوں کا کوئی زیادہ کام کرتا ہے اور نہ بادشاہ سے کوئی کام لیتا ہے. وہ تو صرف بابا کی یاد میں رہ کر کے سارے وشو کی بادشاہی لے لیتا. تو جب بابا کی یاد میں رہ کے سارے وشو کی بادشاہی لی جا سکتی ہے تو نئی دنیا کے نظارے نہیں لائے جا سکتے, لائے جا سکتے. تو بولا یہ اکنامی اور اکنامی کی بابا سوگات دیتا ہے, ایک رس اور ایک آگتا اور ایک آنت والی, کیا سب ایک ہی, ایک کے رس میں ڈوب کے رہنا ہے, ایکانت واسی ایک کے انت میں رہنا اور ایکاگر رہنا, بدھی ادھر 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 جائے ادھر جائے ادھر جائے ادھر جائے, وہ بدھی بھٹکے نہیں, چنچل نہ بنے, ایک کے سامنے اگر رہے, ایک کے آگے رہے, وہ تم کو دیکھے اور تم اس کو دیکھو, ایکاگر رہے, یہی ایک کا پاٹھ پکا کرنا ہے. اس بات سے ہی سمپن بن جائے گی, ایک نامی اکانومی ایک رس ایکاگرتا اور ایک انت. تو بابا نے کہا کہ یہی ایک پاٹھ کے سوگات سبھی بچوں کو دینا. ایسے کہتے دادیوں کو بہت بہت اس نے کی نظر سے نہال کیا اور ہمارے ساتھ دادیاں بھی نیچے ساکار وطن میں آ گئی. اچھا کون سا چل رہی تھی 30 اگست 1965 دوسرے پیج کے مدھیان میں بات چل رہی تھی. शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया है, डायरेक्ट नहीं बनाया है, इसके द्वारा ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया है. तुम शिव बाबा को याद करते हो क्या? तुम ब्रह्मा बाबा को याद
नहीं
करते हो. ये क्या बात हुई? ब्रह्मा के द्वारा जब अपना बनाया है तो दीदी दादी दादाएं किसके द्वारा याद करेंगे? ब्रह्मा के द्वारा याद करेंगे ना? नहीं करेंगे. तो ब्रह्मा से बच्चा पैदा होता है तो पहले याद किसको करता है? अम्मा को याद करता है ना. तो दीदी दादी दादाओं ने तो बुद्धि में ये समझ लिया कि देखो बाबा ने क्या बोला, क्या बोला, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया है. तो दीदी दादी दादा ये समझ बैठे कि बाबा ने देखो हमारी बात कह दी है, हम सच्चे पक्के ब्राह्मण हैं क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा हमको अपना बनाया है. और 69 में ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद जो ज्ञान में आए उनको तो हमारे द्वारा बनना पड़ रहा है ब्राह्मण. ब्रह्मा बाबा तो है नहीं, तो हम डायरेक्ट ब्राह्मण हुआ और ये सब
इनडायरेक्ट,
ये सब तो इनडायरेक्ट दीदी दादी दादाओं के द्वारा बनने वाले ब्राह्मण. लेकिन एडवांस पार्टी में क्या समझाया जाता है? एडवांस पार्टी में समझाया जाता है कि यज्ञ के आदि में एकदम शुरुआत शिव बाप ज्योति बिंदु ऊपर से जब आता है तो जिस तन में भी पहले प्रवेश करता है उसका नाम क्या रखता है?
ब्रह्म.
और ब्रह्मा के तन में प्रवेश किस लिए करता है? ब्राह्मण में किस लिए? पतितों को पावन बनाने के लिए प्रवेश करता है. उसका मकसद ज्ञान सुनाने के लिए नहीं है. क्या करने के लिए? ज्ञान सुनाने के लिए ये मकसद नहीं है, ये तो एक तरीका है. तो सुप्रीम सोल शिव ने जब प्रवेश किया तो किसमें प्रवेश किया? माँ और बाप दोनों में. क्या नई सृष्टि रचनी है ना? तो नई सृष्टि क्या बाप से अकेले पैदा होती है या अम्मा से पैदा होती है? तो दोनों का मेल एक साथ चाहिए ना. तो दोनों से सृष्टि पैदा होती है. तो शिव ने एक साथ दोनों में प्रवेश किया. एक के द्वारा भक्ति मार्ग का फाउंडेशन सुनने सुनाने का डाला, वो किसके द्वारा? माता के द्वारा। और दूसरे के द्वारा समझने और समझाने का फाउंडेशन डाला, ज्ञान का फाउंडेशन डाला। तो ये दोनों ही ब्रह्मा हो गए। क्या हुए?
ब्रह्मा।
दोनों ही ब्रह्मा हुए। उनके द्वारा शुरुआत में जिन्होंने सुना वो पक्के पक्के ब्राह्मण, आदि ब्राह्मण, आदि के ब्राह्मण, पूर्वज ब्राह्मण। उन पूर्वज ब्राह्मणों में किनकी किनकी गिनती होती है? पहले गीता माता, तो वो तो माता हो गई,
वेदांती बहन आएंगे।
जो बाबा अकेला नहीं आता है, आता है तो त्रिमूर्ति के साथ आता है। तो माँ बाप वो दो हो गए और एक कोई माता अथवा कन्या और भी थी तीसरी, तो ये तो त्रिमूर्ति हो गई। और त्रिमूर्ति के अलावा वो सिर्फ माँ बाप ही थोड़े ही परिवार में होते हैं,
बच्चे
परिवार की जो शुरुआत है बच्चों के साथ होनी चाहिए ना। तो कोई बच्चे भी थे क्या?
कोई
जो डायरेक्ट ज्ञान सूर्य की औलाद बनते हैं क्या? चंद्रमा उनको जन्म
नहीं
नहीं देता, ज्ञान सूर्यवंशी बच्चे हैं। तो वो आठ निकलते हैं क्या?
आठ बच्चे होते
हैं, आठ विशेष बच्चे निकलते हैं। आज में भी थे और वो अंत में जब प्रत्यक्षता होती है तो वो सबसे पहले, वो यशदेव पहले प्रत्यक्ष होते हैं। तो बोला शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया। माना बाबा किसके लिए बोल रहे हैं? बाबा बोल रहे हैं उन बच्चों के लिए जो आज में भी थे और अभी अंत में भी एडवांस पार्टी में आकर के बैठे हुए। और दीदी दादी दादा क्या समझ रहे थे? तो कहते ये तो सब बाद में आए, ये नहीं, ये डायरेक्ट बच्चे ब्राह्मण ब्रह्मा के द्वारा। हम डायरेक्ट ब्रह्म। जबकि ज्ञान क्या कहता है कि जब वो आत्मा याद वाली जो ब्रह्मा थी, प्रजापिता थे, जब वो चले गए तो उनका टाइटल ब्रह्मा बाबा को और ओम राधे मम्मा को मिल गया। तो वो टाइटल धारी ब्रह्मा और टाइटल धारी सरस्वती माता बनी। टाइटल धारी तो टाइटल धारी ही होता है और ओरिजिनल तो बोला शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया।
आठ बच्चों को बनाया जो और ज्ञान सूर्य से पैदा हुए थे, उनको बनाया।
आठ बच्चों को अपना बनाया है,
बनाया
है पास्ट में, बनाएंगे नहीं, बनाया है। तुम शिव बाबा को याद करते हो और किसी को याद
नहीं करते?
हाँ, तो दीदी दादी दादाओं को याद करने वाले हो, सो तुम किसी को याद करने वाले
नहीं
हो। ये भी नहीं कहा शिव बाप को याद करते हो, शिव बाप को भी नहीं, बाप माने बिंदु और शिव बाबा माने साकार निराकार का। तुम शिव बाबा को याद करते हो, उनसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे, इसलिए याद करते हो कि हम शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले। तो जिस तन से बोला वो तन तो खत्म हो गया, तो उनसे वर्षा कैसे लेंगे? ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, वो तन तो खत्म हो गया, तो वर्षा कैसे लेंगे? हैं? उनसे वर्षा लेंगे या
लेंगे?
तुम शिव बाबा को याद करते हो, उनसे वर्षा ले, इसलिए याद करते हो हम शिव बाबा से वर्षा ले। तो इसका मतलब हुआ कि जो आज में शिव बाबा था वो यस्त में फिर शिव बाबा बन के प्रत्यक्ष होता है। तो सभी बी के कुमारियां आपस में भाई बहन हो गए। ये युक्ति है, बाप कहते तुम गृहस्थ व्यवहार में भल रहो परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो। क्या? भले गृहस्थ में व्यवहार में रहो, क्या सन्यासी बनने की बात
नहीं
नहीं है, लेकिन रहो कैसे?
कमल
फूल के समान, जैसे कमल फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन कमल फूल को जब कीचड़ में से बाहर निकालो तो एक भी बूंद उसमें कीचड़ की
नहीं
रहती। तो ऐसी अपनी मन बुद्धि को पवित्र बना के रखो, ये करके दिखाओ کیا بول بول کی باتیں نہیں بتائیں گے, بتائیں گے مانیں گے یہ بات, یہ پریکٹیکل میں بات یہ کر کے دکھاؤ.
برہما کماریاں تو ڈر جائیں گے
کیا, کچے کچے برہما کمار کماریاں ہوں گے کیا, ہم کو گرگن کی کیچڑ میں اب رہنا پڑے گا. بابا کہتے نہیں, گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, جو پڑھائی پڑی ہے اس کی پریکشا تو ہونی چاہیے نا, یہ کر کے دکھاؤ. گھر بار کو چھوڑنے کی بات نہیں ہے, اپنی رچنا کی سنبھال بھی کرو. صرف پوتر رہو تو ان دیوتاؤں جیسا پھر سے بن جائیں گے. دیوی دیوتا دھرم کی استھاپنا ضرور ہونی ہے. کیا کہا یہ, کیا کیا بات بتاتے رہتے ہیں کہ گھر گرست میں رہ کر کے پوتر بن کر کے دکھاؤ, اور پھر گھر گرست میں رہیں گے تو ہم تو ڈوب ہی جائیں گے کیا. لیکن نہیں, سب نہیں ڈوبیں گے. کیا, جنہوں نے پکی پڑھائی پڑھی ہوگی, جنہوں نے سچائی سے باپ کو اپنا بنایا ہوگا, ان کو باپ کی مدد انت تک ملے گی. تو بولا دیوی دیوتا سناتن دھرم ضرور استھاپن ہو, گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. باپ سمجھاتے ہیں تم کتنے مورکھ بن گئے ہو, آج سناتن دھرم چھوڑ اپنا ہندو نام رکھ دیے. کیا سناتن, آج سناتن دھرم نام تھا اور نام کیا رکھ دیا,
ہندو.
ہندو اپنے کو کہتے ہیں, اپنے کو دکھاتے ہیں کہ ہم ہند مانے ہنسا, دو مانے دوئتے, ہم دنیا میں سے ہنسا کو ہٹانے والے ہیں. تو یہ صرف منہ کا بکا نہیں مانیں گے. ہم نے جو نام رکھ دیا ہے کہ سول ہنسا کو ہٹانے والے ہندو ہیں, وہ بات چلے گی نہیں. ہندو نام رکھ دیا ہے, ہندو دھرم کس نے استھاپن کیا پتا تو کچھ بھی نہیں ہے. سکھ تو دیوتا تھا, وہ جیسے ہندو دھرم استھاپن کریں گے. باپ بچوں کو سنمکھ بیٹھ سمجھاتے, یہ ہے ہیڈ آفس مدھوبن, کتنے سینٹرس کھولتے ہیں. جو کل پہلے بی کے بنے تھے وہی براہمن سے دیوتا, پھر چھتری, پھر ویسے, پھر سوتر بنتے آئے, اب پھر براہمن بننا پڑے. چوٹی براہمن کی ہے نا, انہیں براہمن برنوں سے پاس کرنا ہوتا ہے. باپ کہتے ہیں تم تو دیوی دیوتا تھے, اب پھر سوتر سے براہمن بنے ہو, سو دیوی دیوتا بننے کے لیے تم پوتر بن رہے ہو. گائن بھی ہے کماری, وہ جو کس پیڑھی کا ادھار کرے. تم سب بی کے ہو نا, کماروں کماریاں دونوں چاہیے, تو ہر ایک پیڑھی کے لیے سدا سکھ کا راستہ دکھاؤ. کیا کہا, کماری وہ نہیں جو 20 جنم کا ادھار کرے یا کم جنم کا ادھار کرے. کون سی کماری, جو پورے 21 جنم کا 21 پیڑھی اپنی تارے. مانا جن جن آتماؤں کو گیان میں چلائے وہ آتمائیں ساری کی ساری 21 جنم لینے والی بنے. کتنے جنم لینے والی, 21 جنم لینے والی بنے. جو 21 جنم لینے والے بنیں گے وہی پکے سوریونشی بنیں گے, نہیں تو کیا ہوگا, کوئی تو چندرونشی میں کنورٹ ہو جائیں گے, کوئی ویسٹ ونشی میں چلے جائیں گے, اسلامی بودھی بنیں گے, کوئی کرسچن بنیں گے, کوئی بودھی, کوئی مسلم بنیں گے. دوسرے میں کنورٹ, دوسرے دھرم میں کنورٹ ہوں گے تو پکے براہمن تو نہیں. تو ہر ایک پیڑھی کے لیے سدا سکھ کا راستہ بتاتے ہو. 30-65 کی واڑی کا تیسرا پیڑھی, چلو اپنے سکھ دھام. یہ دنیا تو ہے دکھ دھام, ابھی باپ کو یاد کرنا ہے. باپ کہتے ہیں پوتر بنو, ماں میں ایکم یاد کرو. کیا کہا, پوتر بننے کے لیے کیا کرو, مجھے ایک کو یاد کرو گے تو پوترتا بدھی میں ٹھہرے گی اور شریر میں بھی پوترتا آئے گی. اگر دوسروں کو یاد کیا, میری یاد کی یاترا کے ساتھ کوئی دوسروں کی یاد کی مکسرٹی کی تو کیا ہوگا, وہ پوترتا یاد پوترتا والی بات آنے والی نہیں ہے. کوئی بھی دے دارے کو یاد مت کرو. باپ بیٹھ بچوں کو سکھ گھنے دیتے ہیں, کیا ये सुख घनेरे देने का काम बाप के सिवाय और कोई कर नहीं सकता। अभी कितना दुख है, दुख में याद किया जाता है भगवान को, बाप स्वर्ग में ले जाते फिर वहाँ याद क्यों करेंगे। यहाँ भगवान को याद करते हैं, हे प्रभु तुम हो अंधों की लाठी, परंतु जानते कुछ नहीं। लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर के कहेंगे तुम माता पिता, अब वो तो है स्वर्ग के मालिक। लक्ष्मी नारायण माता पिता कहाँ से हो गए, वो लक्ष्मी नारायण बनने से पहले जब उन्होंने शिव बाबा प्रवेश किया था तब वो माता पिता होते हैं क्या, बाद में जब वो संपूर्ण बन जाते हैं तब तो शिव बाबा की प्रवेशता की दरकार नहीं। शिव बाबा संपूर्ण में प्रवेश करता है, पावन में प्रवेश करता है या पतित में प्रवेश करता है, पतित में, अपूर्ण में प्रवेश करता है। तो लक्ष्मी नारायण को माता पिता कहना तो गलत बात है, कुछ भी नहीं जानते। अब वो तो है स्वर्ग के मालिक, तो थोड़े सबके माता पिता हो सकते हैं। कृष्ण एक राजधानी का राज है, दूसरे राजधानी क्या, जब नई दुनिया की स्थापना होगी तो दो कुल ब्राह्मणों की दुनिया में स्पष्ट नजर आएंगे। कौन कौन से कुल, एक बेसिक पार्टी के सरकार और दूसरे एडवांस पार्टी के सरकार। जो एडवांस पार्टी का ग्रुप होगा उसमें कृष्ण का पार्ट प्रत्यक्ष नजर आए, और जो चंद्रवंशी पार्टी होगी उसमें राधा का पार्ट स्पष्ट नजर आए। तो कृष्ण एक राजधानी का, राधे दूसरी राजधानी का, राजधानी की, फिर दोनों की सगाई हो जाती है। स्वयंवर के बाद फिर नाम बदल जाता है क्या, स्वयंवर होता है फिर नाम
बदल।
स्वयंवर की बात शास्त्रों में बताई गई है, तो शास्त्रों में जो बातें बताई गई है वो कहाँ की यादगार, यादगार कोई सती में थोड़े स्वयंवर होगा, वहाँ तो कोई जश्न होता ही नहीं क्या, वहाँ कोई भी बाजे गाजे बजाने वाली बात
नहीं
है। तो स्वयंवर के बाद नाम बदल जाता है, वो यहाँ संगम युग की बात है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बसते हैं, कौन कौन से दो रूप, श्रुति चार भुजा है ना, तो चार भुजाएं माने चार आत्मा रूपी मददगार। कौन कौन से चार आत्मा रूपी मददगार, ब्रह्मा के साथ सरस्वती और किसके साथ, शंकर के साथ पार्वती नहीं, शंकर किसी का साथ ही नहीं बनता हमेशा के लिए क्या, इसलिए शंकर को भुजाएं नहीं दिखाई जाती, ब्रह्मा को भुजाएं दिखाई जाती है, शंकर को भुजाएं भुजाएं नहीं दिखाते, जगन्नाथ मंदिर में और भुजगटा दिखाऊंगा। सदाकाल कोई सहयोगी
नहीं,
सदाकाल कोई सहयोगी नहीं बन सकता। हाँ कोई 99% सहयोगी बन सकते हैं, कोई 10% 20% 50% सहयोगी बन सकते हैं, लेकिन सदाकाल कोई सहयोगी नहीं बन सकता। तो विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण दिखाए हैं, एक ब्रह्मा सरस्वती और दूसरे
लक्ष्मी
नारायण। हाँ बताओ बताओ लक्ष्मी नारायण बताए ना। हाँ तो लक्ष्मी नारायण जिसके रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, दीप माला पर महालक्ष्मी को बुलाते हैं, वो युगल है, महालक्ष्मी युगल है। अभी तुम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो, तुम सत्य ब्राह्मण, तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हो, वेद का बाप कहते हैं पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया की मालिक बनो। जैसे तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हो, कौन कराता है, तुम जो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो वो क्या कराते हो, पवित्रता की प्रतिज्ञा कागज पर लिखवाते भी हो और प्रैक्टिकल उनके जीवन में धारण नहीं करवाने की चेष्टा करते हो कि पक्का पक्का पवित्रता का जीवन धारण कर। वो बेसिक में ब्राह्मण इस बात के लिए ज्यादा जोर
नहीं
देते। अच्छा तुम चाहे जैसे चलो, हमें पैसे दे, तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हो, और सच्ची प्रतिज्ञा नहीं, कैसी प्रतिज्ञा, कोर्ट में जाकर के एफिडेविट लिखो ताकि पता चले बच्चे अच्छा पैदा कर लो तो हम तुमसे माफीनामा लिखवा दो। तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हो बेहद का बाप कहते हैं आप पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। घर बैठे भी याद कर सकते हो। बहुत पुरुष लोग स्त्री को कहते हैं तुम बाहर क्यों जाती हो, घर में बैठ करके भगवान को याद करो ना। तो फिर भी बाहर मंदिर आदि में जाती जरूर है, क्यों? क्योंकि जानती है घरगृह की कीचड़ में रहेंगी तो पवित्र रहना मुश्किल है, क्योंकि उनको कोई भगवान तो पढ़ाई
नहीं
पढ़ाता नहीं, तो उनकी श्रद्धा बैठी हुई है कहाँ?
मंदिरों
और मंदिर कब की यादगार है? अभी संगम युग में हम ब्राह्मणों की चर्च की यादगार। अभी संगम युग में हम ब्राह्मणों ने जो बेहद की दुनिया को बेहद का स्वर्ग बनाया है, उस स्वर्ग की नई दुनिया में जो जो आत्माएं अटैच होती जाती है उनका जीवन पवित्र बन गया। तो बोला कि घर बैठे भगवान को याद करो, उनके पति कहते हैं फिर भी बाहर मंदिर आदि में जाती है, धक्के खाते पर घर बैठे शिव बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं तुम सबको वापस जाना है, मरना तो सबको है, क्या कहा? चाहे शरीर से मरे और चाहे जीते जी मरे, जीते जी मरेंगे तो फायदे में ज्यादा रहेंगे और शरीर से जबरदस्ती मरेंगे तो जो फायदा होने वाला है
वो नहीं हो पाएगा।
है ये वो ही महामारी, महाभारत लड़ाई, यवनों की यहाँ लड़ाई है, क्या कहा? यवन माना है? ये महामारी महाभारत लड़ाई भी बाहर की दुनिया में होगी कि अंदर ब्राह्मणों की दुनिया में होगी? अंदर ब्राह्मणों की दुनिया की ये महामारी महाभारत लड़ाई के नाम बताई है, और ये यवनों की लड़ाई है। यवन माने
मुसलमान,
माने ब्राह्मणों की दुनिया में ही कोई आत्माएं हैं हुजूम की हुजूम जो मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होने वाली है 63 जन्म, क्या उनके साथ हमारी हमारी लड़ाई है? लड़ाई चल रही है कि नहीं चल रही?
चल रही है।
सतयुग में कोई लड़ाई नहीं होती, क्या वो मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं जब सतयुग में जाएंगी दूसरे जन्म में जाकर के ब्रह्मा बाबा का बच्चा बनेगी तो वहाँ कोई लड़ाई
नहीं
लड़ेगी। कहाँ लड़ती है? यहाँ लड़ाई लड़ती है, क्योंकि दूसरे नंबर का नारायण होगा ना उसमें दूसरे नंबर का धर्म पिता प्रवेश करेगा इब्राहिम, पहले नंबर का धर्म पिता तो शिव बाबा और दूसरे नंबर का धर्म पिता इब्राहिम प्रवेश करेगा, तो दूसरे नंबर का धर्म पिता कौन से नंबर के नारायण में प्रवेश करेगा? जो सतयुग का दूसरे नंबर का नारायण उसी में प्रवेश करता है, प्रवेश करके उसको अपने धर्म में कन्वर्ट कर लेता है। तो है सारी फाउंडेशन यहाँ पड़ रही है, यहाँ तुम्हारी यवनों की लड़ाई है। सतयुग में कोई लड़ाई होती नहीं है, ये शास्त्रों में झूठ लिख दिया है कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लड़ी, देवताओं और असुरों की लड़ाई कोई स्थूल में होती नहीं है, असुर यहाँ और देवताएं पावन सतयुग में। ज्यादा हम सब यहाँ क्या है? नंबर 12 असुर है, लेकिन जो जिनमें थोड़ी कम आसुरियत है, हैं? और कोई में आसुरियत ज्यादा है, तो जिनमें जास्ती आसुरियत है आसुरी संस्कार है वो हुए युवन यवन, और जिनमें कम संस्कार है वो उनके कन्वर्ट होने की परिवर्तन होने की संभावना है। तो बताया ये झूठ है, सतयुग में असुरों और देवताओं की लड़ाई, बाप कहते हैं तुम इस रावण पर जीत पाए, बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है, ये महाभारत लड़ाई भी लगनी है, ज्यादा अभी लगी नहीं है, बाकी थोड़े बचेंगे, भारत है अविनाशी, महाभारी महाभारत लड़ाई लगेगी तो ऐसा खून संकल्पों का बहेगा तो उसमें सार मर मिलाए जाएंगे, थोड़े से बचेंगे। क्या दिखाते हैं कौरव पांडवों की लड़ाई हुई कितने बचे?
5 पांडव
बचे, तो 5 का मतलब है ऐसे जो उंगलियों में गिने जाने योग्य, मन थोड़ी सी आत्माएं पक्की मजबूत बचेंगे, बाकी सब खत्म हो जाएंगे और बाबा सबको वापस ले जाने, थोड़े से यहाँ बचेंगे और सबको बाबा वापस ले जाएंगे। बाप तो सबकी सरगति करते हैं ना, कोई ऐसा तो बचता नहीं जिसकी सदगति न होती हो, सब आत्माओं को ले जाते हैं। तो अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, नंबर 12 वर्षा ले रहे हो। अच्छा, ओम शांति।